कैसे हैं आप सब साथी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक और बाबरकत महीना हमारे करीब किया है, जिसको पाकर इंशाल्लाह ताला हम अपनी कमी बेशियों को दूर करेंगे। और रमज़ान के बाद अल्लाह ताला दोबारा ऐसे महीने क्यों लेके आता है, ताकि हम अपने आप को दोबारा एनर्जेटिक फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियाँ कर सकें। आप लोग भी ऐसे ही महसूस करते हैं? इस्लाम में जो भी चीज़ है ना, उसके पीछे कोई मकसद है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं है कि बस हो रही है तो हो रही है, इसको बगैर किसी वजह के अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नहीं रखा। तो आज इन आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लेक्चर भी सुना, और ये जो दिन आएंगे हम इनको अगर बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए पूरे साल का की खुशी का जरिया बनेगा। दिल में यही ख्याल था कि इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसा कि कल आप साथियों ने भी सुना कि एक बज़ाहर तो हमें तकलीफ़ तो ही लगता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला अपनी हिकमतें जानते हैं। तो जो हरम में अल्लाह ताला के हुक्म से एक हादसा हुआ, उसी के ऊपर थोड़ी सी आज बात करूँगी, और कि इस वक्त हम मुसलमानों का इसके साथ क्या एटीट्यूड होना चाहिए और हम किस तरह से इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट थिंग्स सुनते हैं। तो क्या आप सुनना चाहते हैं इस बारे में कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ इंडिया से भी कुछ सिस्टर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट पे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उनको अपने साथ लेते हैं और फिर उनका भी बीच में थोड़ा सा लेकर तो थोड़ी सी तिलावत सुनेंगे और फिर शुरू करेंगे। जी औसविल्लाह शैतान रजीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। और फिर हम लोग इंशाल्लाह इसी को लेकर आगे चलेंगे कि जो सानहा हुआ हरम में, हमारा उसके ऊपर क्या रवैया होना चाहिए। जी ऑनलाइन पे जो हमारे साथी हैं, ज़रा शेयर कीजिए कि इस ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या बिहेवियर शो करना चाहिए और हम इसको क्या कहें। कुछ कोई कहता है ये आजमाइश है, कोई कहता है ये पकड़ है, कोई कहता है कुछ कोई कुछ, कोई शहीद कहता है कोई कुछ। तो जब भी कभी कोई ऐसी क्लेमिटी आती है तो उस बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है, आप ज़रा शेयर कीजिए। अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की निशानी, ठीक है। और बाकी लोग भी लिखिए, ज़रा सभी लिखें ताकि क्लियर हो जाए बात, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे इंसान का रिएक्शन जो होता है ना, वो बहुत अहम होता है। अल्लाह ताला जब निशानियाँ दिखाते हैं तो अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं ना कि फिर उससे लोग नसीहत भी लें। और रहल है कि आज जो बात हम करें इसको पूरी उम्मत के साथ शेयर करने की ज़रूरत है कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं हमें इस बारे में। जी कहीं भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हर वक्त मौत के लिए तैयार रहें, ठीक है। और बताइए। वल्लाहु आलम व अंतुम ला तालमून, ठीक है। अल्लाह ताला को इसकी हिकमत पता है, हमें नहीं पता, ये भी एक मैसेज हो सकता है इसके अंदर कि अल्लाह ताला ही जानते हैं। आज ये चीज़ शरअ आसान तक रहू शैयद वहुवा खैरल्लकुम, हो सकता है तुम्हें, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगे और अल्लाह ताला उसी में खैर डाल दे। जी अल्लाह ताला के घर में मौत आई, ये भी एक सोचने का नुक्ता है कि उनके साथ अल्लाह ताला ने जो अच्छा मामला किया होगा, हमें उसके उनके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, ये भी ठीक है। जी और कुछ गलत काम करते हुए मरते हैं और वो वहाँ जाके मरे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिनको अल्लाह ताला ने वहाँ जाके मौत दी, तो यकीनन हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये हुस्ने खातिमा है। लेकिन देखिए, जो चले गए दुनिया से ना, वो तो चले गए, लेकिन असल मसला हमारा क्या होता है कि लोग जो कमेंट्स देने लग जाते हैं ना, या कोई बातें उससे लेना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने इसमें से अपने लिए सबक लेने, आइए फिर देखते हैं कि इन हालात में हमें क्या करना है और हम अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों के लिए तैयार करें। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। क़ाला अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम जिस मौजू पे बात करेंगे, वो रिसेंटली होने वाला एक वाक्या जो हरम की हद में पेश आया, जो भी साथी इसको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो बाद में भी इस लेक्चर को सुनेंगे तो उनके लिए सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हवा और आंधियाँ चली और उसके बाद एक क्रेन जो हरम में रिपेयर के काम के लिए या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो इस तरह से गिरी कि जिसके अंदर फिर कुछ लोग अल्लाह के पास गए और कुछ जख्मी हुए और हरम का कुछ हिस्सा जो है उसको भी नुकसान पहुंचा। अब ये एक वाक्या है, अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे ऐसी चीज़ों से कि जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उसमें हमारे लिए इबरत ना हो। लेकिन हम इस वाक्य को दो मुख्तलिफ एंगल से देख लेते हैं। एक तो ये है कि जो इस हादसे का शिकार हुए इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी और वो क्या है, आपने फरमाया कि जो शख्स हज करते हुए फौत हुआ, यानी अब आप अपने तसव्वुर में लाइए कि एक शख्स घर से निकला और बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से निकलते हैं हज की खातिर और हज करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है जब वो हज से निकला लेकिन हज के दौरान ही उसका इंतकाल हो गया। फरमाया जो शख्स हज के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोजे क्यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो इसके लिए रोजे क्यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जिहाद करने के लिए निकला तो वो फौत हो गया तो उसके लिए रोजे क्यामत तक जिहाद करने का अजर लिख दिया जाता है। अब आप देखिए ये हदीस सही है, सिलसिला तो सही है, नसरुद्दीन अल्बानी की 2553 नंबर की यह हदीस है। अब इस एक हदीस में हमें बहुत सारा कुछ मिल जाता है और वो क्या है, पहली बात देखिए जो हज के लिए निकला और वापस नहीं आया तो अल्लाह ने उसके लिए खैर रख दी ना, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्यामत तक के लिए हज रखा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स एक दफा हज करता है तो क्या सवाब होता है, हज पिछले गुनाहों को माफ करवा देता है ना। फिर इसी तरह हज की अलग से नेकियां भी बहुत सारी हैं, तो जो लोग वहां चले गए हमारा गुमान है कि अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, कोई बीच में ऐसी रुकावट ना हो, कोई उनके ऑब्स्टिकल्स ना हो कबूलियत के रास्ते में जो होते हैं आप सब जानते हैं, रिस्क हलाल के साथ अगर एक हज किया जाता है, और इसी तरह से दिल के कीने बुगज हसद रिकाबतों को ख़त्म करके बहुत ही एक इंसान साफ दिल से अल्लाह के घर जाता है हज की नीयत से तो अल्लाह ताला फिर उसको कबूल करते हैं। तो हम उन सब के लिए अच्छा सोचते हैं कि वो सब रिज़्क़ हलाल के साथ वहाँ गए थे, उनके अंदर कोई शर्क बिदत भी नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उनके उस अमल को कबूल कराने में रुकावट बने, तो इंशाल्लाह ताला फिर उनके लिए तो ये खैर का मामला है। हज के लिए गए हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी थे, कुछ हो सकता है कि अभी भी वहाँ जो गए हैं वो उम्रे के लिए गए हुए हों, और आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि अहराम की हालत में थे कुछ लोग, तो अब हम नहीं जानते कि वो हज का अहराम था या उम्रे का था, हर बंदा अपनी नियतों पर जाएगा। मैं इस हदीस को जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि हज की बात पे भी हम बहुत खुश होते हैं, हम उम्रे की बात पे भी बहुत खुश होते हैं सुन के कि वाह कितनी अच्छी बात है, लेकिन हदीस का आखिरी हिस्सा हम क्यों नहीं सोचते। एक ही हदीस है जिसमें हज के साथ उम्रा और उम्रे के साथ फिर जिहाद का जिक्र है कि जो जिहाद के लिए निकला और फौत हो गया। अब जब लफ्ज जिहाद आता है तो हमारे जहन में फिर किताल आ जाता है, हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं आप में से वो बहुत अच्छी तरह भी ये बात समझ चुके हैं कि जिहाद जो है ये दो तरह से होता है। अगर आप जिहाद बिन नफ्स को हटा भी दें तो लोगों के साथ जो जिहाद है, एक जिहाद तलवार के जरिए से होता है जिसमें दुश्मन के लिए तलवारें निकलती हैं और आप अल्लाह के दीन को बचाने के लिए निकलते हैं, मुल्कों की सरहदों की हिफाजत के लिए जाते हैं और इस तरह से आप वहां पे अपने हिसाब से लड़ते हैं। लेकिन एक जिहाद दूसरा भी तो है ना, जो अल्लाह के दीन को फैलाने का जिहाद होता है। तो जब एक बंदा अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए निकलता है घर से तो बस समझ लीजिए कि अल्लाह के लिए वो मुजाहिद है। तो मैं इस हदीस को पढ़ते हुए सोच रही थी कि हज तो उम्रे का तो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने फिर अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला तेरे रास्तों में निकलें तो मौत आए, मौत आनी तो है ही है ना, जब भी आनी है तो अल्लाह हमें जिहाद की मौत दे, हम तेरे दीन को फैलाने के लिए निकलें, तेरे दीन को तेरे बंदों तक पहुंचाएं और अल्लाह तू हमें उस रास्ते में कबूल कर ले। तो लिहाजा ऐसे लोगों के बारे में हमारे दिल में शक नहीं आना चाहिए। तो क्या फिर हम इनके लिए दुआएं करना छोड़ दें, बख्शे बख्शाए हो गए, क्या हम उनको शहीद के, देखिए हदीस में शहीद के लफ्ज़ नहीं है तो मुझे और आपको नहीं चाहिए कि हम उनको शहीद कहें, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिए, बहुत खुशफहमियों से निकलने वाली बात है, जब तक हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत ना हो, हमारे और अल्लाह के बीच में कोई ऐसी रुकावट ना हो जो हमारी नेकियों की कबूलियत में रुकावट है, तो ये सारी बिशारतें मिलती हैं। अब एक शख्स अगर वो रिस्के हलाल में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है अल्लाह चाहे वो कर सकते, मैं और आप कोई फतवा भी नहीं दे सकते और ना किसी के बारे में दुनिया से जाने के बाद कोई बात करने की जरूरत है, लेकिन असूल यही है। अब हम कि अच्छा चले हम भी वहां जाके मर जाते, मरना बहुत आसान है, जीना मुश्किल है। तो लिहाजा जिंदगी में रिस्क हलाल का एहतमाम करने वाले लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इन चीजों से बचेंगे, और जब हम बचेंगे तो मौत तो कभी भी आ सकती है। फिर दूसरी बात इसके बारे में, हदीस में एक बहुत ही खूबसूरत एक हदीस आती है, रिवायत सुना देती हूँ आपको। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, कहते हैं कि हम नबी सल्लम के साथ एक सफर पे थे, हमने देखा कि एक शख्स अपने ऊंट से गिरा और उसकी ही गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहीं मर गया, और वो एहराम की हालत में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो फरमाया कि इसको पानी और बेरी के पत्तों से गुसल दो और इसको इसी कपड़ों में ही कफना दो, और इसके सर को कवर ना करना, यानी इसके सर को खुला छोड़ देना। और फिर आपने फरमाया कि क्यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठाया जाएगा। ये सुनन तिरमिजी की रिवायत है 951 नंबर की, और इसको सही कहा नासरुद्दीन अल्बानी ने। तो फिर क्या हुआ कि इससे भी बहुत खुशखबरी की बात पता चलती है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो किसी बिल्डिंग के नीचे गिर के मरता है वो शहीद है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 23804 नंबर की, और इब्ने दाऊद में भी 3111 नंबर की है, और इसी तरह निसाई में 1846 नंबर की है, और इसको नासिरुद्दीन अल्बानी ने सही हदीस करार दिया। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया कि जब कोई बैतुल हरम के इरादे से अपने घर से निकलता है और फिर उसकी ऊंटनी जो है वो अपना पाँव सीधा नहीं रख पाती, यानी कि वो जो कदम भी रखती है जमीन पे अल्लाह ताला उसके लिए दर्जे लिख लेता है, यानी उसको रिवॉर्ड देता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो क्या पता चला कि ये चीज इंसान के लिए खुशखबरी का जरिया है कि जब घर से निकले तो उसको हर हर कदम पर अजर भी मिलना था। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि 2 रकात जो तवाफ की हैं वो उसको अदा करता है, तो ये बनी इस्माइल में से गुलामों को आजाद करने के बराबर है। अब वो एक गुलाम है या कितने हैं, अल्लाह नोज दी बेस्ट। तो फिर आप देखिए किसी जगह 70 गुलामों का जिक्र आता है, कहीं कुछ है। फिर इसी तरह से सफा और मरवा के बारे में भी आता है कि उसकी चक्कर की भी ये बात है। तो हमें हदीसों से बहुत अच्छे इशारे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो लोग इस तरह की मौत मरे अल्लाह ताला ने उनके लिए खैर की बात कही होगी। फिर इसी तरह से कुछ और खुशखबरियां भी हैं हदीस में, लेकिन अब वो तो चले गए, उनके लिए तो हम दुआ भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप इससे क्या सबक लें। कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं और कहते हैं कि ये देखो अल्लाह ने अजाब दिया है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी ये क्यामत की निशानी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखिए मुझे तो बस दो लफ्जों की हदीस अच्छी लगती है कि नजा मन समत, निजात पा गया जो खामोश रहा। मैं और आप नहीं जानते, हम क्या जाने, क्या हम अल्लाह ताला के फैसलों पे कमेंट देने की हैसियत भी रखते हैं? तो लिहाजा खामोश रहने की जरूरत है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना सऊदियों को कुछ कहिए ना गवर्नमेंट को कुछ कहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हो सकता है कि वो हाजियों के आराम की नीयत से इतना पैसा लगा के उनको इजी करने के लिए अल्लाह के यहाँ अजर पाने के लिए कर रहे हैं और आप उसको वेस्टर्नाइज का नाम दें और कुछ कहें। तो मुझे आपको इन चीजों को कहने की इजाजत नहीं है, वो जो कुछ भी है होने दीजिए, बस आप और मैं इसे नसीहत लें। हाँ अब इसको हम अपने एंगल से देखते हैं कि मेरे और आपके लिए इसमें क्या काम है। सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जहां तक बात पहुंचे, कि खुदा के लिए वो तस्वीरें जो इस मौके पे उतारी गई या वीडियोस, उसको डिलीट कर दें। आप कसम खा लीजिए कि हमने ये तस्वीरें किसी जगह आगे फॉरवर्ड नहीं करनी, आपके फेसबुक पे हैं, आपके कहीं भी हैं, उसको निकाल दीजिए। क्यों? कि जब लोग इबरत लेने की बजाय तस्वीरों को आगे से आगे करने लग जाते हैं ना, तो याद रखिए इससे दिल सख्त हो जाता है। इतना बहता हुआ खून देखकर कहाँ इबरत रही, हम तो उसी के ऊपर कमेंट देने लग गए और हम उन्हीं चीजों को देखने लग गए कि ये हो गया वो हो गया और इस तरह हुआ और ये नहीं करना था और वो नहीं करना था। भाई आप इसको काट दीजिए, क्योंकि एक दफा देखेंगे ना दिल पिघलेगा, दोबारा देखेंगे कहेंगे हाँ हाँ देखी हुई है। तीसरी बार हो सकता है देखे बगैर ही उसको आप पीछे कर दे, तो ऐसी पिक्चर्स को नहीं करना चाहिए। अगर जख्मी लोगों की तस्वीरें हैं या कुछ और की, तो क्या आप ये चाहते हैं कि कभी अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसे हालात हों और आपकी डेड बॉडी पड़ी हो या आपका खून बिखरा हो, तो दूसरे लोग उसको पढ़े, दूसरे लोग उसको फैलाएं और आगे करें? बिल्कुल भी नहीं चाहते। हर इंसान मरने के बाद भी अपना पर्दा रखना चाहता है। तो मेरी समझ में तो ये कोई बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं है कि आप इन चीजों को खबर करें, बल्कि आप क्या करें, आप दुआ कीजिए, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश की दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मग़फिर लहुम वरहमहुम वाफ़ीहिम वाफ़ अन्हुम वक्रिम नुज़ुलहुम वबस्से मुदख़लहुम। इतनी खूबसूरत दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, तो इसको कीजिए। आमतौर पे आप देखिए कि क्या होता है कि ऐसे वक्त में लोग खबरें सुनने, क्या हुआ, कैसे हुआ, कान खड़े करें, फिर और करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात है कि मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, जिसका मकसद क्या है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और तौबा करें, और अल्लाह ताला किसी पर किसी वक्त भी ऐसी नागहानी आफत ला सकती, हमें इसमें से मिलता है। फिर इस तरह ऐसे वक्त में इन चीज़ों को एक सिर्फ फन बना लेना या चाहे अच्छे ही काम के लिए करना और उनके लिए दुआ भी ना करना, ये दुरुस्त बात नहीं है। हाँ, हमें इससे सबक लेना है, तौबा कीजिए, रोएं, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए और कसरत से उनकी बख्शिश की दुआ करें, और अल्लाह ताला से भी ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी गज़बी का वला तुहलिक नबी अजाबी का वाफिना कबला जालिक, कि अल्लाह तू हमें अपने गज़ब से ना मारना, और अल्लाह तू अपने अजाब के साथ और गज़ब के साथ हमें कत्ल ना करना, और अगर कोई ऐसी वक्त आने वाला हो तो तू हमें उससे पहले ही पाक कर देना, यानी हमें उससे पहले बचा लेना। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर ये तेरी आजमाइश है तो हमें इसमें ना डालना, और अल्लाह अगर ये तेरी पकड़ है तो हमें अपनी पकड़ का शिकार ना करना, और अल्लाह अगर तेरी नजर में ये चीज वाकई हमें कोई निशानी दिखाने लिए है, तो अल्लाह तू हमें इसमें से निशानी दिखा। और ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें इबरत वाला दिल दे, इबरत पकड़े और हम इन चीजों से अपने लिए मदद लें। फिर इस तरह इसमें आप देखिए एक और भी चीज होगी, और वो क्या कि ये सब कुछ हज से पहले हुआ। हदीस में आता है ना कि जिसने हज किया उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, हालांकि नीयत से हज शुरू हो गया। हज का तो मानी भी नीयत करना ही होता है, कसद करना होता है, लेकिन मैं अपने दिल से ये सोच रही थी कि जो घर से गए थे उनको तो ये था कि हम हज करने जा रहे हैं, फिर वहां पहुंच भी गए लेकिन हज नहीं नसीब हुआ। तो बास दफा इंसान नेमत के बिल्कुल करीब पहुंच कर भी दूर कर दिया जाता है। तो ये भी मेरे और आपके लिए इबरत है कि बास दफा हम एक ही चीज को हसरत बना के इतना रोते धोते इतना रोते, और फिर वो चीज मिलती है लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पा सकते, हम पीछे हो जाते हैं, हम उन चीजों को नहीं रहते। फिर एक और चीज छोटी सी ये है कि जब आप में से किसी के मिलने वाले लोग वहां गए हुए हैं या रिश्तेदारों में, तो अब बार बार उनको फोन करके और एक घर में बार बार जब सारे ही फोन करेंगे फिर लोग उनके घर जमा हो रहे, इससे भी बचिए। इसके लिए करना क्या चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं कि आप उन नंबर्स पे रब्ता करें, तो वो लोग करें और उनको बार बार ना पूछें, दुआ करें। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में एक असूल बनाया हुआ है कि मुझे पता भी चल गया मेरे पीछे वालों का क्या हाल है, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, या जिस जगह से भी अमेरिका में अगर कोई रिश्तेदार हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या पता फर्क पड़ेगा। मिसाल है कि अल्लाह न करे कि अगर मेरे किसी भाई बहन की तबीयत खराब है तो मुझे इधर पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, मैं तो परेशान होंगी। तो मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह मुझे पता लगे ना लगे बस वो सब खैर खैरियत से हों। दुआओं में जोर दें, अल्लाह के हवाले करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुख़्ज़िहा नारी बहुत खिलल जन्नता फ़कद फ़ाज़ वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान मौत का जायका चखने वाली है, और क्यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे के पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बेशक वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। इबरत लेनी है तो ये लीजिए कि हम इस दुनिया के धोखों से हटें, अपनी जिंदगी को बचा के रखें, अपने आप को देखें कि किसी वक्त भी तो हमारे साथ ये मामला होने वाला है ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने हुक्म सुना और लेकिन वो हकीकत में नहीं सुनते। सूरत अनफाल की गालिबन आयत नंबर 21 में ये बात आती है। क्या पता चला कि हमें सुनना है, हमें अल्लाह के इन इशारों से अपने आप को बचाना है इन सारी चीजों से, कि कहीं हम इन चीजों में पढ़कर इबरत से पीछे ना हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी चीज़ों से बचाए। और हम दुआ भी करें, फिर इसमें एक और काम भी है कि अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे किसी प्यारे के घर वाले गए हुए थे और उनमें से किसी को इसका नुकसान हुआ, तो फिर उनके लिए दुआ कीजिए। आप उनके लिए अच्छे तरीके से खाना बनाकर भेजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करना और हर वक्त ये कुछ कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ भी हो सकती है कि हज करते हुए, करने की नीयत से कह लीजिए, या करते हुए अगर दुनिया से गए तो कोई गुनाह का काम करने जाए तो वो वहां भी तो जा सकता है। उस वक्त भी तो इंसान सोचे कि क्या पता मैं यहां से वापस आऊंगा नहीं, तो इससे गुनाहों को छोड़ना इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम सब इस चीजों को अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा इबरत की नजर से लेंगे उतना फायदा होगा। फिर आप देखिए कि ये वो चीजें होती हैं कि जिनको बार बार हम सुनते हैं ना, जब मिसाल है कि घर के बच्चे भी ये बात सुन रहे हैं, तो ज्यादा फोकस क्या होता है, टीवी चलाना, जरा क्या है, खबरें सुनाना। क्यों नहीं हम नफिल पढ़कर तौबा करते? हम क्यों नहीं अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह ताला तू ईमान की मौत देना, खात्मा बिल खैर करना। तो ये चंद बातें थी जो हम सब के फायदे की हैं। और इसमें एक और आजमाइश ये भी हो सकती है कि जो हाजी अभी हज पे जाने वाले थे लेकिन अभी नहीं गए, तो कहीं उनकी इरादे मुतजलजल ना हो जाए कि पता नहीं आगे ही ना कुछ और हो जाए, तो ऐसी किसी बात की वजह से अपना हज का इरादा जो है वो मुलतवी नहीं करना चाहिए। जो वहां हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मौत से तुम भाग नहीं सकते, बल्कि और ज्यादा दिल के अंदर आजी रख के जाइए, क्या पता किसी वक्त भी कुछ हो जाए। और मैं तो इसमें एक खैर की बात ये सुन रही थी, सोच रही थी अपने दिल से ही बल्कि, कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि सारे हाजी वहां नहीं गए। और अगर आपने देखा हो तो मताफ तो हर वक्त भरा रहता है लोगों से, लेकिन मुझे लगता है कि रात का कोई ऐसा वक्त होगा कि चंद 100 लोगों के सिवा ज्यादा लोग मुतासिर नहीं हुए। मैं अपने दिल में सोच रही थी कि अगर ये तवाफ़े इफाज़ा वाले दिन होता, आप सब जानते हैं कि जब लोग मीना से वापस आते हैं मुज़दलिफा से होकर अगले दिन 10 ज़िलहज को कह लीजिए, तो उस दिन अगर ये होता तो हजारों लाखों मरते। तो इसमें एक ये भी अमल की बात नोट कीजिए कि बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत को कबूल करना ये खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र कीजिए इस पे भी कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दिखा दिया है, लेकिन तुमने ज्यादा लोगों को इसमें नहीं रखा बल्कि उनको तूने बचा लिया है। तो हमेशा खैर की तरफ लेकर आए। कल एक ऐसी छोटी सी मेरे पास वीडियो आई, ऐसी दो चार थी, तो मैं राह जाते आते जाते कुछ काम करते हुए मौका मिले तो देखती हूँ। तो कुछ पिक्चर्स थी जिसमें एक थंडर स्टॉर्म की पिक्चर्स बन रही थी, बहुत गुबार सा, और एक छोटी वीडियो थी। जब मैंने उसको प्ले किया, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या है, लेकिन जब वो प्ले हुई तो पीछे बैकग्राउंड में अरबिक थी और गाड़ी को चला रहा है और साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। तो मुझे देखकर एकदम फीलिंग आई कि लगता है कि ये किसी मुसलमान मुल्क में कोई थंडर स्टॉर्म आया है। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सऊदी अरब की तस्वीरें हैं, लेकिन अब जब ये वाक्या सुना तो मुझे उसके बाद गुमान हुआ कि वाकई ये बात जो है वहां की होगी। तो उसकी जो बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मुसलसल लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे। बल्कि अगर आपने इस सानहे की वीडियो भी देखी होगी तो उस वक्त भी लोगों की जुबानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि शायद इस मंजर को आंखों से देखना, कई हजारों लोगों ने अगर ये मंजर वहां देखा है तो ये उनके लिए इबरत का जरिया बन जाए। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इन चीज़ों में खैर व आफियत रखे और बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकें। और अल्लाह ताला दूसरों के साथ जो हालात करता है वो हमें दिखाकर इबरत लेने वाला बना दे, ना कि अल्लाह ताला हमारे हालात ऐसे कर दे कि दूसरे हम इबरत लें। और एक आखिरी बात जहन में आ गई, और वो क्या है कि ज़िंदगी को गनीमत जाने। किसी को नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है, क्या रह गया क्या नहीं रह गया, किस तरह से हम अपने आप को इन चीज़ों में लेके फंसते हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जिसको दुनिया का कोई गम इस वक्त गमजदा कर रहा है ना, वो भी इस बात को सुनकर खुश हो जाए कि ये दुनिया ख़त्म होगी, इसके गम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसकी खुशियों में बहकने वाला अगर बहुत ही ज़्यादा हद से बाहर हो गया तो वो अपने आप को मुतमईन कर ले। और वो क्या कि मैं किसी वक्त भी इस खुशी से महरूम कर दिया जा सकता हूँ। इंसान की कितनी बड़ी बेबसी है, कितनी बड़ी बेबसी है कि हम अपने आप को इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि हम इबरत नहीं ले पाते। तो अल्लाह ताला मेरी और आपकी मदद करे। जज़ाकल्लाह खैर। अब कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में इस ख़ास इस मौके से मुतल्लिक या कुछ और हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, ये आपका एक सवाल ऑनलाइन से आ गया। ये कहती हैं कि व्हाट टू से टू नॉन मुस्लिम व्हेन दे क्रिटिसाइज दिस इंसिडेंट, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये सब अल्लाह की मर्जी है। देखिए वही बात है, मुझे कुरान ही की आयतें याद आ जाती हैं ऐसे मौकों पे कि एक ही वाक्य को अल्लाह ताला कुछ लोगों की हिदायत का जरिया बना देते हैं और एक वाक्य को कुछ लोगों की गुमराही का जरिया बना देते हैं। तो इससे अल्लाह का अला कुल्ली शयइन कदीर होना साबित होता है, इसमें क्या बुरी बात है। इसमें तो मुझे तो और ज्यादा खौफ आता है इस बात को सुनकर कि अल्लाह अपने घर को की भी परवाह नहीं करता, लोगों को नसीहत देने के लिए अल्लाह ताला किसी वक्त भी ले आता है। तो आप उनको उनके साथ इस मौजू पे बात ही कोई ना करें। जिसको अल्लाह की समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला कौन है, उसकी जात क्या है, तो उसको फिर उसकी इन बातों से भी कोई फायदा नहीं होगा। और कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला की निशानियों से इबरत और नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह की मर्जी है। कभी भी साइड इश्यूज पे नॉन मुस्लिम से बात ना किया करें प्लीज, क्योंकि जब तक उनको अल्लाह की कदर नहीं आएगी वो आपकी एक बात सुनकर दूसरी बात भी करेंगे। तो चलिए दुआ करते हैं। आइए थोड़ी सी दुआ हम उन लोगों के लिए भी कर लेते हैं कि जो इस हादसे का शिकार हुए, और अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सारी तकलीफों से बचा के रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे जो भाई बहन और जो साथी ईमान की हालत में इस हादसे का शिकार हुए तो उनको बख्श दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, अगर उनके अंदर कोई कमी बेशी थी तो अपनी रहमत से उसको दूर कर दे। किसी किस्म की भी अगर उनके अंदर कोई खराबी थी या अल्लाह, तो उसको पर्दे में डाल दे। कोई किसी इंसानी हकूक का शिकार था कि जो उसने जो नहीं अदा किए थे, तो या अल्लाह उनके घर वालों को और उनके रिश्तेदारों को तौफीक दे इस बात की कि वो भी उनको माफ़ कर दें। और या अल्लाह, तो हम सब को खैर की मौत अता फरमा, बुरी मौत से बचाना। और अल्लाह, जो हमारे तेरे पास जा चुके ईमान की हालत में, या अल्लाह, तो उन सब को बख्श दे। अल्लाह, तू कादिर है इस बात पे कि किसी को कहीं भी ले जाए। या अल्लाह, तू हमारे हाल पे रहम फरमाना। अल्लाहुम्मग़फिर लहू वरफा दरजतहू फिल महदीजीन वख्लुफहू फी अक़बिही फिल गाबिरीन वग़फिर लना वलहू या रब्बल आलमीन वफ़सख लहू फी क़ब्रिही वनव्विर लहू फीही। ए अल्लाह, तो इनको माफ़ फरमा और हिदायत याफ्ता लोगों में इनका दर्जा बुलंद फरमा, और इनके पीछे रह जाने वालों में अब तो इनका खलीफा बन जा। या रब्बुल आलमीन, हमें और इनको बख्श दे, और इनकी कब्र में कुशादगी अता फरमा और इनके लिए रोशनी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहयिना व मैयितिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना व शाहिदिना व गाइबिना। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے، اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اور یا اللہ، جو ہمارے موجود لوگ ہیں اور جو موجود نہیں ان کو بخش دے. اور اللہ، ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھے تو اس کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ، ہمیں ان مرنے والوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا، اور ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اے اللہ، ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں، اور ہمارے حاضر اور جو ہم میں غائب ہیں، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں، اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما. اللہم اغفر لہو وارحمہو وعافہی وعفو عنہ واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہ واخلا خیر من اخلہ وزوجا خیر من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیسہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ، ان سب کو بخش دے، اور ان پر رحم فرما، اور ان کو عافیت عطا فرما، اور ان کو معاف فرما دے، اور ان کی بہترین مہمانی فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، اور ان کو برف فرولوں سے پانی سے دھو دے، اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو صاف کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے. اور انہیں تو ان کے گھر گھر کے بدلے میں بہتر گھر عطا فرما، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور ان کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما، اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ہم پہ اپنا رحم فرما. اللہم اغفر لهم وارحمهم واغسلهم بالبرد واغسلهم كما يغسل الثوب. اے اللہ ان سب کو بخش دے اور ان پر رحم فرما دے، اور انہیں اولوں سے دھو دے اور ان کو اس طرح سے دھو دے جس طرح کپڑے کو دھویا جاتا ہے. اللہم عبدك وابن عمتك احتاج الى رحمتك وانت غنی عن عذابه ان کان مخصنا فزد فی احسانه وان کان مسیعا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرے بندے تیری بندی کے بندے تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے. یا اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کے نیک اعمال میں اضافہ فرما، اور اگر برائیوں میں تھے تو یا اللہ تو ان سے درگزر فرما. اے اللہ تم سب کو بھی اچھی موت عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کو بری موت سے بچانا. یا اللہ ہماری موت ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے کہانی بن جائے. اے اللہ تو ہمارا اچھا خاتمہ کرنا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں مارنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ کرنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا. ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار. اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے رب مجھے حکمت عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما اور حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی ہم کسی فتنے کا شکار ہوں. اللہم توفنی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار والحقنی بالاخیار. اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے اور بروں میں نہ چھوڑ دینا، اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى بالرفیق. یا اللہ تیرے نبی کی یہ کتنی پیاری دعا تھی کہ اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو، اور یا اللہ مجھے موت دے جب کہ موت میرے لیے بہتر ہو. اے اللہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری زندگی بہتر ہے یا موت. یا اللہ اس زندگی کے دنوں کو خیر اور برکت کے ساتھ گزارنے والا بنا دے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفانی اذا علمت الوفات خیر لی. اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے ہمیں زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے، اور جب کہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور موت دے جب کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے. یا اللہ ہمیں اس زندگی کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے سب بھائی بہنوں کو اپنی رحمتوں میں رکھنا. جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو عافیت سے رکھنا، صحت تندرستی عطا کرنا. اور یا اللہ جو ساتھی اب باقی بھی حج پہ جانے والے ہیں سب کی حفاظت فرمانا، اور ان کو واپس اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی اس طرح لانا کہ تو نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور اس طرح کر دیا ہو کہ جیسے کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.